पहाड़ और मेरा जीवन किस 14। और इस तरह रातों रात मैं बुद्धू बच्चे से बना एक होशियार बालक। हमारे किराए के घर की तस्वीर आपने पिछली किस्त में देखी ली होगी। अगर आप इस घर को ठीक से देखें तो पाएंगे कि इसमें एक कमरा ऊपर है जो हमें 2 साल बाद मिला। तब तक पूरा परिवार नीचे वाले 1.5 कमरे में ही रहता था। 1.5 का अर्थ है कि अंदर वाला बड़ा कमरा और जिसमें कि पूरा परिवार सोता था, और एक बाहर का छोटा कमरा जिसमें माँ ने अपना चूल्हा बनाया हुआ था। बाद में जब हमने ऊपर वाला कमरा भी किराए पर ले लिया तो नीचे के इस बाहर वाले कमरे को हमने अपनी गाय का गोठ बना दिया। इसी कमरे में कुछ समय के लिए हमने मुर्गियाँ भी पाली थी। फिलहाल मैं आपको उस एक रात की बात बताता हूँ जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरे पिता यूँ तो 10वीं तक ही पढ़े थे, पर उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने मिशन इंटर कॉलेज से 10वीं पास की थी। हमारा गांव खड़को भल्या पिथौरागढ़ शहर से करीब 30-40 किलोमीटर दूर था। वहाँ के बच्चे गुरना के स्कूल में पढ़ने आते थे। गांव के ज़्यादातर दूसरे बच्चों के विपरीत मेरे पिताजी पढ़ने के बहुत शौकीन थे। वे गांव छोड़कर पिथौरागढ़ बाजार के से करीब 10 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर स्थित भेलौत नामक जगह पर आकर अपने ताऊ जी के घर पर ही रहे। वहाँ से वे पैदल ही स्कूल जाते थे। ठंड के दिनों में सुबह सुबह घर से बाहर निकलने की कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है, पर वे ऐसे में भी पैदल ही स्कूल जाते थे। जाहिर है पढ़ाई को लेकर उनमें जुनून भरा हुआ था। भेलौत से मिशन इंटर कॉलेज पैदल चलकर पहुंचने में कुछ भी नहीं तो 2.5 घंटा तो लग ही जाता होगा। जाड़ों में शाम को जल्दी अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में जानवरों का भी खतरा रहता था। उन दिनों बाघ भालू जंगली सुअर और सियारों का आतंक बना ही रहता था। पिताजी ने इम्तहानों के दिनों के समय में समय बचाने के लिए बुंगा और मुस्टिमाड़ू में रहने की भी व्यवस्था की, पर मुस्टिमाड़ू में वे जिस परिवार के साथ रहे वे उनका गांव से मंगाया राशन खुद खा जाते थे और पिताजी को भूखा रखते थे। कुछ ही महीनों में वे बहुत कमज़ोर हो गए। जब पिताजी की माँ को माजरा समझ आया तो उन्होंने पिताजी की माँ बोले तो मेरी आमा, तो उन्होंने वहाँ से उन्हें दूसरी जगह भेज दिया। पिताजी बचपन से ही बहुत शरीफ इंसान रहे। वे बीमार पड़ने पर भी घर वालों को नहीं बताते थे। माँ बताती है कि एक बार गांव में उनकी माँ के पास खबर पहुँची कि पिताजी पिथौरागढ़ में बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं। वे घबरा गई। पिताजी उनके तीन बेटियों के बाद जन्मे बेटे थे। उनके मन में बेटे के लिए बहुत ज़्यादा मोह था। उन्हें जैसे ही बेटे के बीमार होने की खबर मिली वे गांव में घर का सारा कारोबार छोड़ पैदल ही बाजार की ओर चल पड़ी। खड़को भल्या से पिथौरागढ़ बाजार अगर शॉर्टकट से जाओ तो आपको पूरा पहाड़ चढ़कर गुरना पहुंचना होता है, और वहां से करीब 15 किलोमीटर और चलकर आप पिथौरागढ़ पहुँच पाते हो। वे जब पिथौरागढ़ की बाजार पहुँची तो ऐसा भी संयोगी हुआ कि पिताजी स्कूल से घर की ओर आ रहे थे। सिलथाम में दोनों एक दूसरे के आमने सामने पड़ गए। अरे ईजा, तू यहाँ कैसे? पिताजी ने माँ को देख हैरानी से पूछा, और तब अमा ने पिताजी को अपनी चिंता की बात बताई और पिताजी ने अमा की हंसी उड़ाते हुए कहा कि वे तो बिल्कुल ठीक हैं। पिताजी को स्वस्थ देख अमा की चिंता दूर हुई, और तब उन्हें गाँव में घर के कारोबार की चिंता हुई कि भैंसों को दाना देना है, गोट साफ करना है, नौले से पानी लाना है। वे उल्टे पांव गांव की ओर भागी और रात में जाकर वापस पहुंची। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को यह मालूम चल सके कि मेरे पिताजी पढ़ाई को कितना कितना ज़्यादा मानते थे। पढ़ाई के लिए अगर वे खुद को इतनी यंत्रणा दे सकते थे तो जाहिर है कि उनकी अपने बच्चों से भी वैसे ही अपेक्षा रहनी थी। दिल्ली और जम्मू में रहने तक मैं बहुत छोटा था, पर पिथौरागढ़ आने तक मैं 4वीं कक्षा में पहुंच चुका था और मेरी गर्दन का नाप भी इतना बढ़ चुका था कि वह अब पिताजी की हथेलियों में फिट आ सकती थी। मुझे आज भी वह दृश्य अच्छी तरह याद है जब हम नीचे वाले घर में अंदर वाले एक कमरे की दहलीज पर ढेबरी की रोशनी में पढ़ रहे थे। पिताजी को जाने क्या सूझी कि उन्होंने आज पहली मर्तबा अपने बड़े बेटे की बजाय छोटे बेटे को सामने बैठाया, और सोचिए किताब भी निकलवाई तो किस विषय की? गणित। अगले दिन स्कूल में गणित का ही टेस्ट था। स्कूल के मास्टर साहब जिनका नाम डीके जोशी था, हमें इन दिनों लघुत्तम समापवर्त यानी LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ा रहे थे। जैसे अनपढ़ों के लिए काला अक्षर भैंस के बराबर होता है, मेरे लिए गणित भी लगभग वैसे ही थी। पिताजी को जब पढ़ाते हुए मेरे गणित के गए गुजरे ज्ञान का एहसास हुआ तो उन्होंने मेरी गर्दन मरोड़ मरोड़ कर बराबर ही कर डाली, जैसा कि अक्सर मेरे साथ होता ही रहता था। उन दिनों भी मेरी नाक बह रही थी, यहाँ पिताजी अपनी हथेलियों के बीच मेरी गर्दन पर दबाव बनाते और उधर तुरंत पतले गोंद की तरह मेरा सिकान नासिका द्वार से मुक्त होकर जमींदोज होने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन आकर नीचे की ओर गति करता कि मैं उसके टूट कर अलग हो जाने से एन पहले उस पर अपनी नाक से बल आरोपित कर उसे ऊर्ध्व दिशा में खींच लेता और इस तरह वह अपने उद्गम में आ मूल स्रोत में विलीन हो जाता। माँ पास में ही चूल्हे पर खाना बना रही थी, पर पिता का सख्त रवैया देख और उनकी मेरे अज्ञान पर टीका टिप्पणी सुन उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बीज बचाव कर मेरी गर्दन को उन सख्त हथेलियों के दबाव से बचा ले। मेरे पास बचने का कोई इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं सचमुच पूरी ताकत से दिमाग लगाऊं और पिताजी मुझे जो कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहे थे उसे जल्दी से जल्दी समझ लूँ। इस तरह जीवन में पहली बार मैंने गणित में अपना दिमाग लगाया ताकि पिताजी की मार से बच सकूं और मैं कामयाब भी हुआ। एक बार समझ आने के बाद कि LCM कैसे निकालते हैं, मैंने पिताजी के दिए सभी सवाल कर डाले। अगले दिन स्कूल में 15 नंबर का टेस्ट था, वह भी मैंने अपनी समझ से अच्छा किया। दो दिन बाद DK जोशी सर ने टेस्ट के पेपर बांटने थे। इस सर के बारे में बता दूं कि वे उंगलियों के बीच पेंसिल फंसाकर चेहरे पर कोई शिकन लाए बिना उन पर अपनी उंगलियों का दबाव बढ़ाते जाते थे। बच्चा मारे दर्द की हवा में कूदने लग जाता और वे जालिम की तरह खड़े मुस्कुराते रहते। जब उन्होंने टेस्ट के पेपर बांटना शुरू किया तो सारे पेपर बांट दिए, बस मेरा ही रह गया। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी कि दो दिन पहले पिताजी के हाथ से मार खाई थी, क्या आज DK सर की मार भी खानी पड़ेगी। DK सर का चेहरा भावहीन रहता था, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करने वाले हैं। उन्होंने हाथ में पेपर हिलाते हुए कहा, किसे पेपर नहीं मिला। मैंने अपना हाथ खड़ा किया, उन्होंने मुझे सामने बुलाया, मैं भीगी बिल्ली की तरह सामने गया। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और तब मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी, यह है क्लास का सबसे होशियार लड़का, इसने एक भी सवाल गलत नहीं किया, सिर्फ इसके 15 में से 15 नंबर आए हैं, बाकी किसी के नहीं, शाबाश सुंदर, उन्होंने कहा और मेरी पीठ ठोकी। मुझे चंद लम्हों तक कुछ सूझा नहीं कि मैं क्या करूं। मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया था। मैं अपने तब तक के जीवन में अपनी ऐसी तारीफ सुनने और गणित में इतने नंबर लाने का आदि न था। उस रोज़ घर पहुंचने तक मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैंने घर पहुंच माँ को बताया कि आज स्कूल में क्या हुआ और साथ में यह भी जोड़ दिया कि अब तो देखना मैं बड़ा होकर कितना बड़ा आदमी बनूंगा। सचमुच मेरे लिए वह दिन बहुत निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि मुझे टीचर के मुंह से अपनी तारीफ सुनने का नशा हो गया। अपना नाम सुनने के लिए मैं खुद ही देर तक पढ़ने लगा। जो पढ़ेगा तो उसके अच्छे नंबर भी अच्छे आएंगे। दूसरे लड़के ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, इस तरह मेरी कक्षा में अच्छे नंबर आने का सिलसिला शुरू हुआ। कक्षा 5 का जब परीक्षाफल आया तो मैं कक्षा में तीसरे स्थान पर था, मुझसे आगे सिर्फ 2 लड़कियाँ थीं। कैसा कायाकल्प हुआ देखो, पिताजी के सिर्फ एक दिन की मार से एक बुद्धू बच्चा होशियार बन गया। और इस संयोग के बारे में आप क्या कहोगे कि वह दिन और उसके बाद का पूरा जीवन पिताजी ने न मुझे कभी पढ़ाया और न कभी किसी बात पर डांट लगाई। मैं हमेशा उनका चहेता बेटा बना रहा जिसने उनके फौज में अफसर बनने का सपना पूरा किया और अफसर बनने के बाद उनके साथ बैठकर शराब पीने जैसा दिलेर परंतु यादगार कारनामा भी करके दिखाया।